श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, हकीकी गीता, श्रीमद् भगवद गीता, अथ पंचदशोध्याय, पंद्रहवां बाब। अजीम इंसानों ने मुख्तलिफ मिसालें देकर इस दुनिया को समझाने की कोशिश की है। किसी ने इसको दुनियावी जंगल कहा तो किसी ने दुनियावी समंदर, हालात के मुताबिक इसी को दुनियावी नदी और दुनियावी कुआं भी कहा गया, और कभी इसका मवाजिना गोपद यानी गाय के खुर से किया गया कि जितना हवास का दायरा है उतनी ही दुनिया है, और आखिर में ऐसी भी हालत आई कि नाम लेत बहुसिंध सुखाई, दुनियावी समंदर भी सूख गया। क्या दुनिया में ऐसे समंदर हैं? जोग के मालिक श्री कृष्ण ने भी दुनिया को समंदर और दरख्त का नाम दिया। बाब 12 में उन्होंने कहा, जो मेरे लाशरीक बंदे हैं उनको जल्द ही दुनियावी समंदर से नजात दिलाने वाला होता हूं। यहां पेश करदा बाब में जोग के मालिक श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया एक दरख्त है, इसको काटते हुए ही जोगी हजरात उस आला मकाम की तलाश करते हैं। देखें श्री भगवान वाचा।
ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।
अर्जुन, ऊर्ध्वमूलम्, ऊपर की तरफ माबूद ही जिसकी जड़ है, अधःशाखम्, नीचे कुदरत ही जिसकी शाखें हैं, ऐसे दुनियावी शक्ल वाले पीपल के दरख्त को लाफानी कहते हैं। दरख्त तो अश्व यानी कल तक भी रहने वाला नहीं, जब चाहे कट जाए, लेकिन लाफानी श्री कृष्ण के मुताबिक लाफानी दो हैं, एक दुनियावी दरख्त लाफानी है और दूसरा उससे भी मावरा आला लाफानी वेद। इस लाफानी दुनियावी दरख्त के पत्ते कहे गए हैं। जो इंसान इस दुनियावी शक्ल वाले दरख्त को देखते हुए जान लेता है वो वेद का आलिम है। जिसने उस दुनियावी दरख्त को जाना है उसने वेद को जाना है, ना कि किताब पढ़ने वाला। किताब पढ़ने से तो महज उस तरफ बढ़ने की तरगीब मिलती है, पत्तों की जगह पर वेद की क्या जरूरत है। दर हकीकत इंसान भटकते भटकते जिस आखिरी कोंपल यानी बर्गेनों यानी आखिरी जन को हासिल करता है, वहीं से वेद के छंद यानी बंदिशें यानी जो भलाई की तकलीफ करते हैं, तरगीब देते हैं, वहीं से उनका इस्तेमाल है, वहीं से भटकाव खत्म हो जाता है, वो मंजिल यानी हकीकत की जानिब मुड़ जाता है। और
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके।
उस दुनियावी दरख्त के तीनों सिफात के जरिए बढ़ी हुई ख्वाहिशात और ऐशो इशरत की शक्ल में यानी बर्गेनों कोंपल वाली शाखें नीचे और ऊपर हर तरफ फैली हुई हैं। نیچے کی طرف حشرات الارض تک اور اوپر دیوتا کی مرتبت سے لے کر برہما تک ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، اور محض انسانی یونی میں اعمال کے مطابق باندھنے والی ہیں۔ دوسری سبھی یونیاں عیش و عشرت کا لطف اٹھانے کے لیے ہیں، انسانی یونی ہی اعمال کے مطابق بندش تیار کرتی ہے۔
نروپمسیہ تتھوپلبھیتے نانتو ن چادیرن چ سمپرتشٹھا اشوتھمینم سوویروڑمولم اسنگشستریڑن دریڑین چھتوا۔
لیکن اس دنیاوی درخت کی شکل جیسی بتائی گئی ہے ویسی یہاں نہیں پائی جاتی، کیونکہ نہ تو اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے اور نہ یہ اچھی حالت میں ہی ہے، کیونکہ یہ بدلتی رہنے والی ہے۔ اس مضبوط جامد والے دنیاوی شکل والے درخت کو مضبوط یعنی اسنگ شسترین یعنی ترک دنیا کے اسلحے کے ذریعے کاٹنا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پیپل کی جڑ میں معبود رہتے ہیں یا پیپل کا پتا وید ہے اور گھی کا چراغ آرتی دکھانے لگے درخت کو۔ اس دنیاوی درخت کی جڑ تو خود معبود ہی ہے جو تخم کی طرح اثر انداز ہے، کیا وہ بھی کٹ جائے گا؟ اٹل ترک دنیا کے ذریعے اس دنیا کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، یہی کاٹنا ہے، کاٹ کر کریں کیا؟
ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी।
अटल तर्क दुनिया के जरिए दुनियावी दरख्त को काटने के बाद اس اعلی مقام بھگوان کی اچھی طرح تلاش کرنی چاہیے، جس میں داخلہ حاصل کر لینے کے بعد انسان دنیا میں دوبارہ نہیں آتے، یعنی مکمل نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کی تلاش کس طرح ممکن ہے؟ جوگ کے مالک فرماتے ہیں اس کے لیے خود سپردگی ضروری ہے۔ جس معبود سے قدیمی دنیاوی درخت کے خصلت کا پھیلاؤ ہے، اسی ابدی انسان معبود کی میں پناہ میں ہوں، یعنی ان کی پناہ میں گئے بغیر درخت کا خاتمہ ہوگا نہیں۔ اب پناہ میں گیا ہوا ترک دنیا کے مرتبے پر فائز انسان کیسے سمجھے کہ درخت کٹ گیا؟ اس کی شناخت کیا ہے؟ اس پر کہتے ہیں
निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमौ व्ययम तत्।
मजकूरा बाला तरह की खुद सुपुर्दगी से جن کی فریفتگی اور عزت ختم ہو گئی ہے، فریفتگی کے شکل والے صحبت کے اثرات پر جنہوں نے قابو پا لیا ہے، ادھیاتم نتیا معبود کی شکل میں جو لوگ مسلسل طور پر فائز ہیں، جن کی خواہشات خاص طور سے ختم ہو گئی ہیں اور آرام و تکلیف کے وبال سے آزاد ہوئے عالم حضرات اس لافانی اعلی مقام کو حاصل کرتے ہیں۔ جب تک یہ حالت نہیں آتی تب تک دنیاوی درخت نہیں کٹتا، یہاں تک بیراگ کی ضرورت رہتی ہے۔ اس اعلی مقام کی شکل کیا ہے جسے حاصل کرتے ہیں؟
نتد بھاسیتے سوریو न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
उस आला मकाम को न सूरज न चांद और न आग ही रोशन कर पाती है, जिस आला मकाम को हासिल कर इंसान लौटकर फिर दुनिया में नहीं आते हैं, वही मेरा आला मकाम है, यानी उनका दोबारा जन्म नहीं होता। इस मकाम को हासिल करने में सबका बराबर इख्तियार है। इस पर कहते हैं,
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।
जीवलोके यानी इस जिस्म में, यानी जिस्म ही दुनिया है, ये जी रूह मेरा ही अबदी हिस्सा है, और वही इन तीनों सिफात वाली फितरत यानी माया में मौजूद होकर मन के साथ पांचों हवास को रागिब करती है। यह किस तरह?
शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्।
जिस तरह हवा खुशबू के मकाम से खुशबू को हासिल करके ले जाती है, ठीक उसी तरह जिस्म की मालिक जी रूह यानी जीवात्मा जिस पहले वाले जिस्म को तर्क करती है, उससे मन और पांचों हवा से बातिनी के कारोबार को हासिल करके यानी रागिब करके साथ लेकर फिर जिस जिस्म को हासिल करती है उसमें दाखिल होती है, यानी जब अगला जिस्म उसी वक्त तय है तो आटे का जिर्म यानी पिंड बनाकर किसे पहुंचाते हो? कबूल करता कौन है? लिहाजा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ये जहालत तेरे अंदर कहां से पैदा हो गई कि पिंडोदक क्रिया यानी जिर्म पानी वगैरह देने की रस्म खत्म हो जाएगी, वहां जाकर करता क्या है? मन के साथ छह हवास कौन है?
श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते।
उस जिस्म में मौजूद होकर ये जी रूह कान आंख जिल्द जबान नाक और मन का सहारा लेकर यानी इन सब के सहारे ही मौजूआत का लुत्फ उठाती है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता, सब उसे देख नहीं पाते। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं,
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः।
जिस्म तर्क करके जाती हुई जिस्म में मौजूद मौजूआत का लुत्फ उठाती हुई यह तीनों सिफात से मुजयन जी रूह को खास तौर से नादान ला इल्म लोग नहीं जानते, सिर्फ इल्म की नजर रखने वाले ही उसे जानते हैं देखते हैं, यही हकीकत है। अब वो नजर कैसे मिले? आगे देखें।
मम यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः।
जोगी हजरात अपने दिल में तबीयत को हर तरफ से समेट कर इस रूह का पूरी कोशिश करते हुए ही रूबरू दीदार करते हैं, लेकिन नाशुक्र रूह वाले यानी दागदार बातिन वाले जाहिल लोग कोशिश करते हुए भी इस रूह को नहीं जानते, क्योंकि उनका बातिन दुनियावी खसाइल में अभी बिखरा है। तबीयत को हर तरफ से समेट कर यकसोई के साथ बातिन में कोशिश करने वाले अकीदतमंद लोग ही उसे हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा बातिनी तौर से मुसलसल तौर पर याद जगाए रखना जरूरी है। अब उन अजीम इंसानों की शक्ल में जो शौकतें पाई जाती हैं, यानी जिनके बारे में पहले ही बता आए हैं, उन पर रोशनी डालते हैं।
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्।
जो जलाल सूरज मौजूद रहकर सारे जहान को रोशन करता है, जो जलाल चांद में मौजूद है और जो जलाल आग में है, उसे तू मेरा ही जलाल समझ। अब उस अजीम इंसान के जरिए सादिर होने वाले कामों के बारे में बताते हैं।
गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः।
मैं ही जमीन में दाखिल होकर अपनी कुव्वत से सारे जानदारों को कबूल करता हूँ और चांद में लज्जत की शक्ल होकर तमाम नबातात को मुकव्वी बनाता हूँ।
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्।
मैं ही जानदारों के अजसाम में आग की शक्ल में मौजूद होकर जान यानी प्राण और रियाह यानी अपान का हामिल बनकर चार तरह के अजनास का हाजिम हूं। बाप चार में खुद जोग के मालिक श्री कृष्ण आतिशे नफ्स, आतिशे एहतियात, आतिशे जोग, आतिशे जान और रियाह, आतिशे बरहम वगैरह 13-14 तरह की आतिशों का बयान किया, जिनमें सबका नतीजा इल्म है। इल्म ही आतिश है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी आतिश की शक्ल होकर जान और रियाह से मुजयन चार तरीकों से, यानी विर्द हमेशा तनफुस से होता है। इसके चार तरीके बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और प्राह हैं। इन चारों तरीकों से तैयार होने वाले अजनास का मैं ही हाजिम हूं। श्री कृष्ण के मुताबिक ब्रह्मा ही वाहिद अनाज है, जिससे रूह को मुकम्मल आसूदगी हासिल होती है, फिर कभी ना आसूदगी नहीं होती। जिस्म की परवरिश करने वाले मुरव्वजा अनाजों को जोग के मालिक ने खुराक का नाम दिया है, यानी युक्ताहार, यानी हकीकी अनाज रूह मुतलक है। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और प्रा के चार तरीकों से गुजरकर ही वो अनाज अच्छी तरह पकता है। इसी को तमाम अजीम इंसानों ने नाम रूप यानी शक्ल, लीला यानी तमाशा और धाम यानी मकाम का नाम दिया है। पहले नाम का विर्ध होता है, धीरे धीरे दिल की दुनिया में भगवान की शक्ल साफ आया होने लगती है, उसके बाद इसके तमाशे का एहसास होने लगता है कि वो माबूद किस तरह जर्रे जर्रे में मौजूद है, किस तरह उसकी सब जगह अमलदारी है। इस तरह दिल की दुनिया में कारोबार का दीदार ही तमाशा है, यानी बाहर की रामलीला रासलीला नहीं। उस खुदाई तमाशे का बदी ही एहसास करते हुए जब हकीकी तमाशागर की खुर्बत नसीब होने लगती है, तब मकाम की हालत आती है। उसका इल्म हासिल कर रियाजत कश उसी मकाम पर फाइज हो जाता है। इसमें इस्तेकरार पाना और मावराई विर्त के मुकम्मल होने की हालत में माबूद की खुर्बत पाकर उसमें फाइज होना दोनों साथ साथ होते हैं। इस तरह जान और रियाह यानी तनफ्फुस से मुजयन होकर चारों तरीकों से यानी बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और सिलसिलेवार तरक्की करते करते प्रा के तकमेली दौर में वो यानी अनाज भगवान अच्छी तरह पक जाता है, हासिल भी हो जाता है, हजम भी हो जाता है, उससे लगाव रखने वाला भी अच्छी तरह पका हुआ ही है।
सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेम चाहम्।
मैं ही सारे जानदारों के दिल में आलिमुल गैब की शक्ल में मौजूद हूँ, मुझसे ही शक्ल की याद यानी सूरत जो उनसुरे रूह मुतलक फरामोश है उसकी याद हो आना होती है, यानी दौरे हुसूल की अक्कासी है। याद के साथ ही इल्म यानी बदी ही दीदार और अपोहनम यानी दिक्कतों का खातिमा मुझ मतलूब से ही होता है। सब वेदों के जरिए मैं ही काबिले फहम हूं, वेदांत का कारकुन यानी वेदस्य अंतः सवेदांत यानी अलग था तभी तो जानकारी हुई, जब जानते ही उसी शक्ल में या उसी मकाम पर पहुंच गया तो कौन किसको जाने। वेद की आखिरी हालत का कारकुन मैं ही हूं और वेद को जानने वाला भी मैं ही हूं, यानी वेद का आलिम। बाप की इब्तिदा में उन्होंने कहा कि दुनिया एक दरख्त है, ऊपर माबूद जड़ और नीचे तमाम मनाजिर तक शाखें हैं। जो इस जड़ से दुनिया को अलग करके जानता है, जड़ से जानता है, वो वेद का आलिम है। यहां कहते हैं कि मैं वेद का आलिम हूं जिसे इसका इल्म है। श्री कृष्ण ने अपने को उसके मवाजिने में खड़ा किया कि वो वेदवित यानी वेद के आलिम है, मैं वेद का आलिम हूं। श्री कृष्ण भी एक हक शनास अजीम इंसान है, जोगियों में भी आला जोगी थे। यहां यह सवाल पूरा हुआ, इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में इंसान की शक्ल दो तरह की है।
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते।
अर्जुन, इस दुनिया में क्षर, फना होने वाले, बदलने वाले और अक्षर यानी लाफानी, ना खत्म होने वाले ना बदलने वाले ऐसे दो तरह के इंसान हैं। उनमें सारे दुनियावी जानदारों के अजसाम तो फानी हैं, खत्म होने वाले इंसान हैं। आज हैं तो कल नहीं रह जाएंगे, और ये बुलंदी पर फाइज इंसान लाफानी कहा जाता है। रियाजत के जरिए मन के साथ हवास पर काबू, यानी जिसके हवास बतौर बुलंदी पर गैर मुतहर्रिक हैं, वही लाफानी कहलाता है। अब आप औरत कहे जाते हो, ख्वाह मर्द, अगर जिस्म और जिस्मानी शक्ल इख्तियार करने की वजह से तासुरात यानी संस्कारों का सिलसिला जारी है तो आप फानी इंसान हैं, और जब मन के साथ हवास साकिन हो जाते हैं तब वही लाफानी इंसान कहलाता है। लेकिन यह भी इंसान की खास हालत है, इन दोनों से मावरा एक दूसरा इंसान भी है।
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारितः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः।
उन दोनों से आला इंसान तो दूसरा ही है, जो तीनों अवालिम में दाखिल होकर सबको संभालता और परवरिश करता है। और लाफानी रूह मुतलक माबूद इस तरह से कहा गया है, रूह मुतलक गैर मरई लाफानी अजीम इंसान वगैरह उसके तारुफ कुनिंदा अल्फाज हैं। दर हकीकत ये दूसरा ही है, यानी लाबयान है। ये फानी लाफानी से मावरा अजीम इंसान की इंतहाई हालत है, जिसको माबूद वगैरह अल्फाज से इशारा किया गया है, मगर वो दूसरा है यानी लाबयान है। उसी हालत में जोग के मालिक श्री कृष्ण अपना भी तारुफ कराते हैं, जैसे
यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः।
मैं मजकूरा बाला फानी, काबिले तब्दील दायरे से बिल्कुल मावरा और लाफानी, कभी ना खत्म होने वाले मुस्तकिल मिजाज इंसानों से भी बालातर हूं। लिहाजा जहान और वेद में अजीम इंसान नाम से मशहूर हूं।
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत।
अय भारत, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस तरह जो आलिम इंसान मुझ आला तरीन इंसान को जाहिरी तौर से जानता है, वो अलीम इंसान हर तरह से मुझ रूह पाक को ही याद करता है, वो मुझसे जुदा नहीं है।
इति गुह्यतमं शास्त्रं इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत।
बेगुनाह अर्जुन, इस तरह बहुत ही राज भरी ये शरीयत मेरे जरिए बयान की गई, इसको उनसुर से जानकर इंसान मुकम्मल आलिम और शाद काम हो जाता है। लिहाजा जोग के मालिक श्री कृष्ण का ये कलाम खुद में मुकम्मल शरीयत है। श्री कृष्ण का यह राज बेहद पोशीदा था, उन्होंने सिर्फ अपने तालिबों को बताया, यह अहल के लिए था, सबके लिए नहीं। लेकिन जब यही राज की बात यानी शरीयत लिखने में आ जाती है, सबके सामने किताब रहती है। लिहाजा लगता है कि श्री कृष्ण ने सबके लिए कहा, लेकिन हकीकत में यह अहल के लिए ही है। श्री कृष्ण की यह शक्ल सबके लिए थी भी नहीं। कोई उन्हें बादशाह, कोई पैगंबर, तो कोई यादव यानी यादव खानदान का ही मानता था। लेकिन अहले अर्जुन से उन्होंने कोई निफाक नहीं रखा। उसने पाया कि वो आला हकीकी अजीम इंसान है। निफाक रखते तो उसका भला ही नहीं होता। यही सिफत हुसूल याफ्ता हर अजीम इंसान में पाई गई। रामकृष्ण परमहंस देव एक बार बहुत खुश थे। मुकल्लिदों ने पूछा, आज तो आप बहुत खुश हैं। वो बोले, आज मैं वो परमहंस हो गया। उनके दौर में कोई आला इंसान परमहंस थे, उनकी तरफ इशारा किया। कुछ वक्त के बाद वो मन, अमल और जबान यानी मन, क्रम, वचन से ला ताल्लुकी की उम्मीद के साथ अपने पीछे लगे रियाजत कशों से बोले, देखो अब तुम लोग शक मत करना, मैं वही राम हूं जो त्रेता के दौर में हुए थे, वही कृष्ण हूं जो द्वापर के वक्त में हुए थे, मैं उन्हीं की पाकीजा रूह हूं, वही शक्ल हूं। अगर हासिल करना है तो मुझे देखो। ठीक इसी तरह काबिले एहतराम गुरु महाराज जी भी सबके सामने कहा करते थे, हो हम परवरदिगार के कासिद हैं। जो सचमुच में आरिफ है वो माबूद का कासिद है। हमारे जरिए ही उनका पैगाम मिलता है। हजरत ईसा ने कहा, मैं परवरदिगार का पिसर हूं, मेरे करीब आओ, इस वास्ते के माबूद का पिसर कहलाओगे। लिहाजा सभी औलाद हो सकते हैं। हां ये बात जुदा है कि करीब आने का मतलब उन तक पहुंचने की रियाजत, रियाजत के सिलसिले में चलकर पूरी करनी है। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूं, पैगंबर हूं। काबिले एहतराम महाराज जी सबसे तो इतना ही कहते थे, ना किसी ख्याल की तरदीद, ना हिमायत यानी खंडन, ना मंडन। लेकिन जो बेजारी में पीछे लगे थे उनसे कहते थे, सिर्फ मेरी शक्ल को देखो, अगर तुम्हें उस उनसुरे आला यानी माबूद की चाहत है तो मुझे देखो, शक मत करो। बहुत से लोगों ने शुभा किया तो उनको एहसास में दिखाकर, डांट फटकार कर, इन खारिजी ख्यालात से हटाकर जिनमें जोग के मालिक श्री कृष्ण के मुताबिक बाप दो श्लोक 40 से 43 बेशुमार इबादत के तरीके हैं, अपनी शक्ल में लगाया। वो शुरू से आज तक अजीम इंसान की शक्ल में कायम है। इसी तरह श्री कृष्ण की अपनी हैसियत यानी हालत बसे गए रास तो थी, लेकिन अपने ला शरीक अकीदत मन मुकम्मल अहलियत रखने वाले आशिक अर्जुन के लिए उन्होंने उसे आश्कारा किया। हर बंदे के लिए मुमकिन है, अजीम इंसान लाखों को उस रास्ते पर चला देते हैं। मग़्ज़े सुखन निष्कर्ष। इस बाब की इब्तिदा में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने बताया कि दुनिया एक दरख्त है, पीपल जैसा दरख्त है। पीपल महज एक मिसाल है। ऊपर इसकी जड़ माबूद और नीचे तमाम कुदरत तक उसकी शाखें दर शाखें हैं। जो इस दरख्त को जड़ के साथ जान लेता है वो वेदों का आलिम है। इस दुनियावी दरख्त की शाखें ऊपर और नीचे हर तरफ फैली हुई हैं। मूलानी, इसकी जड़ों का जाल भी ऊपर नीचे हर तरफ फैला हुआ है, क्योंकि वो जड़ माबूद है और वही तुख्म की शक्ल में हर जानदार के दिल में कयाम करता है। पुराण का वाकया है कि एक बार गुले नीलोफर यानी कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा ने सोचा कि मेरा मजदर क्या है। जहां से वो पैदा हुए थे उस कमल की डंडी में उतरते चले गए, मुसलसल उतरते चले गए, लेकिन अपना मजदर न देख सके। तब ना उम्मीद होकर उसी कमल के ऊपर बैठ गए, तबीयत को काबू करने में लग गए और तसव्वुर के जरिए उन्होंने अपना असल मजदर पा लिया। उन सुरे आला का बदी ही दीदार किया, हम्द सना की, आला तरीन शक्ल वाले माबूद से ही हुक्म मिला के मैं हूं तो हर जगह, लेकिन मेरे हुजूर की जगह महज दिल है। दिल की दुनिया में जो तसव्वुर करता है वो मुझे हासिल कर लेता है। खालिक एक अलामत है, जोग की रियाजत की एक निखरी हुई हालत में इस मकाम की बेदारी है। माबूद की तरफ माइल इल्म तसव्वुफ से मुजयन अक्ल ही ब्रह्मा है। कमल पानी में रहते हुए भी बेदाग और लाताल्लुक रहता है। अक्ल जब तक इधर उधर तलाश करती है तब तक नहीं पाती, और जब वही अक्ल लताफत के मकाम पर फाइज होकर मन के साथ हवास को समेट कर दिल की दुनिया में बंदिश कर लेती है, उस बंदिश के भी तहलील होने की हालत में अपने ही दिल में रूह मुतलक को हासिल कर लेती है। यहां भी जोग के मालिक श्री कृष्ण के मुताबिक दुनिया एक दरख्त है जिसकी जड़ हर तरफ है और शाखें भी हर जगह हैं। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, आमाल के मुताबिक सिर्फ इंसान यानी योनि में बंदिश तैयार करता है, बांधता है। दूसरी योनियां तो उन्हीं आमाल के मुताबिक अपने किए का नतीजा हासिल करती हैं। लिहाजा अटल बैराग की शक्ल वाले असलहे के जरिए इस दुनियावी शक्ल वाले पीपल के दरख्त को तू काट और उस आला मकाम की तलाश कर जिस मकाम पर पहुंचे हुए औलिया दोबारा जन्म हासिल नहीं करते। कैसे जाना जाए कि दुनियावी दरख्त कट गया? जोग के मालिक बताते हैं कि जो इज्जत और फरीफ्तगी से हर जगह मुबर्रा है, जिसने सोहबत के असरात पर फतेह हासिल कर ली है, जिसकी ख्वाहिशात खत्म हो गई हैं और जो कश्मकश से आजाद है, वो इंसान उस उनसुरे आला को हासिल करता है। उस आला मकाम को ना सूरज ना चांद ना आग ही रोशन कर पाती है। वो खुद बशक्ले नूर है जिसमें दाखिला होने के बाद लौट कर नहीं आना पड़ता। वो मेरा आला मकाम है जिसे हासिल करने का इख्तियार सबको है, क्योंकि वो जी रूह मेरा ही खालिस हिस्सा है। जिस्म को तर्क करते वक्त जी रूह मन और पांचों हवास के कारोबार को लेकर नए जिस्म को कबूल करती है। तासुरात साले हैं तो साले सतह पर पहुंच जाती है। मलकात रद्दिया वाली यानी राजसी है तो औसत मकाम पर, और मलकात मजमूम वाली यानी तामसी रहने पर नफरत अंगेज यानी योनियों तक पहुंच जाती है। और हवास की निगरान मन के वसीले से मौजूआत को देखती और उनसे लुत्फ अंदोज होती है। ये दिखाई नहीं पड़ती, इसे देखने की नजर इल्म है। कुछ याद कर लेने का नाम इल्म नहीं है। जोगी हजरात दिल में तबीयत को समेटकर पूरी कोशिश के बाद ही इसे देख पाते हैं। लिहाजा इल्म तदबीर से हासिल होता है, हां मुताले से उसकी तरफ रुझान पैदा होता है। शख्स मुजयन एहसास फरामोश लोग कोशिश के बावजूद भी उसे हासिल नहीं कर पाते। यहां हुसूल वाले मकाम की अक्कासी है, लिहाजा उस हालत की शौकतों का बहाव कुदरत के मुताबिक है। उन पर रोशनी डालते हुए जोग के मालिक श्री कृष्ण कहते हैं कि सूरज और चांद में मैं ही रोशनी हूं, आग में मैं ही जलाल हूं, मैं ही शदीद आग की शक्ल से चार तरीकों से पकने वाले अनाज को हजम करता हूं। श्री कृष्ण के अल्फाज में अनाज वाहिद माबूद है, यानी अन्नम ब्रह्मा वैजानात। जिस उपनिषद से श्री कृष्ण ने हवाला लिया है उसका यही फैसला है, जिसे हासिल कर ये रूह आसूदा हो जाती है। बैखरी से प्रातक अनाज मुकम्मल तौर से पककर हजम हो जाता है, वो जर्फ भी खत्म हो जाता है। इस अनाज को मैं ही हजम करता हूं, यानी मुर्शिदे कामिल जब तक रदबान न हो तब तक ये हुसूल याबी नहीं होती। इस पर जोर देते हुए जोग के मालिक श्री कृष्ण फिर बयान करते हैं कि तमाम जानदारों के दिल की दुनिया में मौजूद होकर मैं ही याद दिलाता हूं, जो शक्ल फरामोश थी उसकी याद दिलाता हूं, याद के साथ हासिल होने वाला इल्म भी मैं ही हूं, उसमें आने वाली दिक्कतों का हल भी मुझसे ही होता है, मैं ही जानने के लायक हूं। और जाहिर हो जाने के बाद जानकारी का खात्मा करने वाला भी मैं ही हूं। कौन किसे जाने, मैं वेद का आलिम हूं। बाप के शुरू में कहा था, जो दुनियावी दरख्त को जड़ के साथ जानता है वो वेद का आलिम है, लेकिन उसको काटने वाला ही जानता है। यहां कहते हैं मैं भी वेद का आलिम हूं, उन वेद के आलिमों में अपने को भी शुमार करते हैं। लिहाजा श्री कृष्ण भी यहां वेद के आलिम आला तरीन इंसान हैं, जिसे पाने का इख्तियार हर इंसान को है। आखिर में उन्होंने बताया कि दुनिया में तीन तरह के इंसान हैं। दुनिया के सारे जानदारों वगैरह के तमाम अज्साम फानी हैं, मुस्तकिल मिजाज होने की हालत में यही इंसान लाफानी है, लेकिन है कश्मकश वाला और इससे भी मावरा जो रूह मुतलक रब्बुल आलमीन गैर मरई और लाफानी कहा जाता है, दरअसल वो दूसरा ही है। ये फानी और लाफानी से मावरा वाली हालत है, यही आला मकाम की हालत है। इसके तनासुब से कहते हैं कि मैं भी फना और बका से मावरा वही हूं, लिहाजा लोग मुझे आला तरीन इंसान कहते हैं। इस तरह आला तरीन इंसान को जो जानते हैं वो आलिमी अकीदतमंद लोग हमेशा हर जानिब से मुझे ही याद करते हैं, उनकी जानकारी में फर्क नहीं है। अर्जुन, ये बे इंतहा पोशीदा राज की बात मैंने तुझको बताई, हुसूल वाले अजीम इंसान सबके सामने नहीं कहते, लेकिन जो अहल है उससे भी निफाक नहीं रखते। निफाक रखेंगे तो वो हासिल करेगा कैसे। इस बाब में रूह के तीन हालात का बयान, फानी लाफानी और बेहतरीन इंसान की शक्ल में जाहिर किया गया, जैसा इससे पहले किसी दूसरे बाब में नहीं है। लिहाजा ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता की तमसील उपनिषद वो इल्म तसव्वुफ और इल्म रियाजत से मुतालिक श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकालिमे में मर्द हक आगाह योग यानी पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां बाब मुकम्मल होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद् भगवद गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। इस तरह काबिले एहतराम परमहंस परमानंद जी के मुकल्लिद स्वामी अड़गड़ानंद के जरिए लिखी श्रीमद् भगवद गीता की तशरीह यथार्थ गीता यानी हकीकी गीता में मर्द हक आगाह योग यानी पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां बाब मुकम्मल हुआ। हरिओम तत्सत।